Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Sarve Veda Yat Padam Amananti Tapansi Sarvani Chayad Vadanti यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। बालक नचिकेता के प्रश्न का उत्तर आचार्य यम देते हुए कहते हैं, जिस तत्व का संपूर्ण वेद प्रतिपादन करते हैं, तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति, संपूर्ण तप जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए शास्त्र में कहा गया है, ब्रह्मचारी गण जिस परमात्मा को पाने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का अनुष्ठान करते हैं, ऐसा पद परमात्मा तत्व उसका संक्षेप में प्रतिपादन करूंगा। कल आप लोगों ने सविस्तर इसका श्रवण किया था, सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति। इसका दूसरा पाद है तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति। यदर्थम, जिस परमात्मा को पाने के लिए सर्वाणि तपांसि वदन्ति, संपूर्ण तप शास्त्र में कहे गए। अनेकों प्रकार के तप हैं, तप के बिना परमात्मा को जानना बहुत कठिन है। तपसा ब्रह्म विजानियात, श्रुति कहती है तप के द्वारा हम ब्रह्म को जाने, क्योंकि तप से इंद्रियों की शुद्धि होती है, तप से मन की शुद्धि होती है। मनसा एव इदम आप्तव्यम, हम तत्व को जानेंगे तो साधन तो यही है, परमात्मा को जानने के उपकरण यही हमारा मन है, यही हमारी बुद्धि है। इसलिए श्रुति ने कहा कि सूक्ष्म या सूक्ष्म दर्शी भी दृश्यते, त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्म या सूक्ष्म दर्शी भी। तत्वबोध होता है, आत्मज्ञान होता है, हम परमात्मा को जान सकते हैं, लेकिन किसके द्वारा? तो श्रुति कहते हैं सूक्ष्म या सूक्ष्म दर्शी भी बुद्ध्या, जो पवित्र हैं साधना के द्वारा, तप के द्वारा पवित्र हुई बुद्धि के द्वारा हम जान सकते हैं। और इसके लिए तप बहुत महत्वपूर्ण है। तप माने परमात्मा के मार्ग पर चलते समय जो आपको कष्ट होता है, जो वेदना होती है, उसी को तप बोलते हैं। जैसे आप सत्संग कर रहे हैं तो सत्संग करने में भी बहुत तप है, एक घंटा बैठना है, पैर दुखते हैं, कमर दुखती है, बारिश आंधी तूफान गर्मी आदि सह के भी आपको अपने घर से यहां तक पहुंचना है, ये सारी चीजें तप के अंतर्गत हैं। तीर्थाटन व्यक्ति करता है ये भी तप के अंतर्गत है। आदमी चलता है, तीर्थाटन माने चलने की प्रक्रिया थी पुराने जमाने में, पैदल चला करते थे लोग। हम व्रत उपवास करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, नवरात्रियों में व्रत रखते हैं, ये आत्म संयम की प्रक्रिया है। ये तप माने संयम की प्रक्रिया है, हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर रहे हैं, इंद्रियों का संयम कर रहे हैं। और ये इंद्रियों का संयम रूप जो तप है ये हमारे इंद्रियों को शुद्ध करता है। और यहां इंद्रियों की शुद्धि का अर्थ कोई कपड़े धोने की तरह नहीं है, यहां इंद्रियों की मन की शुद्धि जैसे हम स्नान करते हैं और अपने शरीर को धोते हैं, स्वच्छ करते हैं, वैसे यहां इंद्रियों की शुद्धि नहीं है। इंद्रियों की शुद्धि माने वासना का क्षय, इंद्रियों की शुद्धि माने सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमारे इंद्रियों में जो विषयों को पाने का पागलपन है वो कम होता जाए, क्योंकि कल भी इस विषय को मैंने बहुत सूक्ष्म और सविस्तर आपके सामने रखा था। वासना, इच्छा, कामना हमारे इंद्रियों को जगा देती है, और एक बार हमारी इंद्रियां जग जाती हैं, परांच खाणी वितरणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन, कि हमारी इंद्रियां बहिर्मुख हो जाती है, परांची फिर वो बाहर खींचती हैं। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं परांची माने बाहर, पर जहां स्व नहीं है, जहां पर हम नहीं है, जहां परायापन है, द्वैत है, वहां पर हमारी इंद्रियां खींचती हैं। ये विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, बाहर के आकार, सौंदर्य, ये सारी चीजें हमें खींचती हैं बाहर। और फिर व्यतरणित स्वयं हो तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन, व्यतरणित का अर्थ होता है वो इंद्रियां हिंसा करती हैं, बाहर जाकर बहिर्मुख होकर हिंसा करती हैं। हिंसा का मतलब कि जैसे हमारी इंद्रियां जब बाहर जाती हैं, नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, तो व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे कष्ट आ पड़ते हैं। व्यक्ति स्वयं परेशान रहता है, अपने इंद्रियों से परेशान रहता है, अपने मन से परेशान रहता है, और ये परेशान होना, दुखी होना अपने ही इंद्रियों से, यही है इसका हिंसा करने का स्वभाव। और एक बड़े सुंदर शब्द का प्रयोग किया, वितरणत स्वयंभू। स्वयंभू माने ब्रह्मा जी ने पैदा ही ऐसा किया है, इसका स्वभाव है। जैसे हम आंख में हो तो रूप दिखाई देगा, आत्मा थोड़ी दिखाई देगा। हम जब कान में होंगे तो शब्द सुनाई देगा, हम जिह्वा में होंगे तो रस का अनुभव होगा, त्वचा में होंगे तो स्पर्श का अनुभव होगा। ये तो द्वार है, जिस देश पर व्यक्ति खड़ा होता है वहां से उसको वही दिखता है, दूसरी चीजें दिखाई नहीं दे सकती। हम अपने छत पर खड़े हैं तो हम बाहर की चीजें देख सकते हैं, हम अंदर की, अपने घर की चीजें अंदर की नहीं देख सकते, एक स्वाभाविक है। ये इंद्रियां एक द्वार हैं, और द्वार में जब हम पहुंचते हैं तो आत्मदर्शन संभव नहीं, इसलिए नान्तरात्मन, इसलिए अंतर्मुख होना बहुत जरूरी है। ये वासना हमें दरवाजे में पहुंचा देती है, इंद्रियों में पहुंचा देती है, और तप के द्वारा नियंत्रण करना है, तप के द्वारा संयम करना है। और जितना मन इंद्रियां संयमित होगी, माने जितना वो निर्वसन होगी, जितना अनासक्त होती जाएगी उतना ही हम अंतर्मुख होते जाएंगे। इसलिए सभी शास्त्रों में तप का विधान है, आत्मनियंत्रण, इंद्रिय संयम। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, अब तीसरे पाद में कहते हैं इसके तीन अर्थ हैं, या ब्रह्म शब्द के तीन अर्थ हैं। पहला अर्थ तो सामान्य यही है, ब्रह्मचर्यम चरन्ति। बहुत सारे साधक ब्रह्मचारी गण, अब यहां ब्रह्मचारी शब्द से आप थोड़ा व्यापक अर्थ लें। ब्रह्मचारी शब्द का अर्थ यह भी है कि ब्रह्मचारी गण आपके चार आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचारी गण जिस परमात्मा को पाने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का अनुष्ठान करते हैं, और इसका व्यापक अर्थ यदि आप करते हैं तो दो प्रकार का ब्रह्मचर्य शास्त्र ने कहा है, एक नैष्ठिक ब्रह्मचर्य और दूसरा उपकुर्वान ब्रह्मचर्य। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का मतलब होता है जिन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लिया है, जैसे साधु संत, विरक्त, वैष्णव, बहुत से साधक अविवाहित रहकर तत्व को पाने का प्रयत्न करते हैं, उसको बोलते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। और जो गृहस्थाश्रम में रहते हुए संयम का आश्रय लेकर तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं उसको भी शास्त्र ब्रह्मचारी बोलता है, उसको उपकुर्वान ब्रह्मचारी बोला है। वो उपकुर्वान ब्रह्मचर्य हैं जो संयम, वहां पर भी त्याग है और संयम पूर्वक भोग, वो उपकुर्वान ब्रह्मचर्य। आप यहां पर वो ब्रह्मचर्य भी ले सकते हैं, गृहस्थाश्रम के लोग भी आत्मसंयम पूर्वक सीमित ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जिस तत्व का चिंतन करते हैं। और इसका दूसरा अर्थ है, ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद भी है, ब्रह्मचर्यम का अर्थ है वेदाध्ययनम कुर्वन्ति। बहुत से लोग वेद का पाठ, वेद की ऋचाओं का पाठ, वेदाध्ययन, स्वाध्यायो अध्येतव्य, जिस तत्व को प्राप्त करने के लिए करते हैं। और इसका तीसरा अर्थ है ब्रह्मचर्य, माने ब्रह्म माने ब्रह्म और उस तत्व का श्रवण, मनन, निदिध्यासन। आत्मा वारे श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य, उस ब्रह्म तत्व का श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि के द्वारा उसको पाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा जो तत्व है, तत्व पदम आचार्य यम कहते, वो पद जहां बहुत सारे ब्रह्मचारी गण, तपस्वी, साधक जिसको पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, ऐसा जो पद है तत्व, उसके बारे में मैं संक्षेप में कहूंगा। और ये जो पद जो शब्द है बड़ा महत्वपूर्ण है, पद गतव और पदस्थैर्य, इन दो धातुओं से ये पद शब्द बनता है। एक धातु है पदगतव, पदगतव का मतलब होता है गतिशील, वो भी पद है जिसमें गति है, जिसमें स्थायिता नहीं है। हम बहुत सारी चीजों को प्राप्त करते हैं लेकिन जो वस्तु प्राप्त करते हैं उसमें स्थिरता नहीं है, तो हम उस पद पर कब तक प्रतिष्ठित होंगे। आप ऐसा समझ लीजिए कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं वो कुर्सी कमजोर हो तो आप कब तक उस कुर्सी पर बैठे रहेंगे। वो कमजोर हैं, वो जर्जर हैं, वो धीरे धीरे उसका क्षरण हो रहा है। आप जिस डाल पर बैठे हैं वो डाल धीरे धीरे टूट रही है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसको पाने के बाद भी वो चीज स्थिर नहीं होती है। यही बात आपके श्रीमद् भागवत में कही, जब बालक ध्रुव को मां समझा रही थी, सुनी थी, सुरुचि ने अपमान किया बालक नचिकेता का, अपने पिता के गोद में बैठने के लिए जा रहे थे, ध्रुव अपने पिता के गोद में बैठने के लिए जा रहे थे, सौतेली मां सुरुचि उन्होंने अपमानित कर दिया, गोद से नीचे उतारा, खींचा, बहुत अपशब्द कहे। बालक ध्रुव को बहुत कष्ट हुआ, अपने मां के पास गए रोते हुए, अपनी पीड़ा को अपने मां के सामने रखा। लेकिन वो सुनीति सामान्य मां नहीं थी, बहुत उच्च कोटि की साधिका, सुबुद्ध विदुषी, उसका विवेक जागृत था, उसके मन में राग द्वेष आदि विकार नहीं थे, जलन घृणा ईर्ष्या नहीं थी। उन्होंने ध्रुव को बहुत सुंदर उपदेश किया, मां मंगलम तात परेशु मंस्था। उन्होंने कहा कि बेटा मां मंगलम, तुम दूसरे के अमंगल की कामना मत करो, वो तुम्हारी सौतेली मां है, तो मां है, और इसलिए उसके प्रति तुम अपशब्द मत कहो। उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो तुम्हें सत्य कहा है, उसमें भी गाली देते हुए भी अपमान करते हुए भी उन्होंने कुछ सत्य कहे हैं, तो उसके ऊपर दृष्टि रखो। उन्होंने कहा कि तुमको सौतेली मां ने कहा भगवान का भजन कर, कितनी अच्छी बात कही। उन्होंने एक बात बोली तुमको कि तुम भगवान का भजन करो और पुण्य कमाओ, उसके बाद तुम मेरा बेटा बनो और उसके बाद फिर पिता के गोद में बैठने के अधिकारी बन पाओगे। सुनीति ने कहा कि बाकी चीजें छोड़ दो, सत्य को ग्रहण करो, सार ग्राही बनो, गुणग्राही बनो, तुम उतनी बात अपने मां की पकड़ लो कि भगवान का भजन करना है और परमात्मा को पाना है। उन्होंने बहुत गहरी बात बोली। आप यहां पद शब्द को समझना चाहते हैं तो इससे अच्छा दृष्टांत आपको नहीं मिलेगा। मां ने कहा कि पिता की गोद में तुम कब तक बैठोगे, तुम पिता की गोद में बैठना चाहते हो, तुम बैठोगे तो भी कितना दिन तक, क्या तुम्हारे पिता की गोद और वो तुम्हारे पिता का राज सिंहासन पद कितने दिन का है, ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष, आप कितना दिन तक उनके गोद में बैठोगे। वो शाश्वत नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो परिवर्तनशील है। ये जो पद है ना, ये पद गतो धातु से बना हुआ है, उसमें गति है, उसमें विसर्जन है, उसमें विनाश है, परिवर्तन है। इसलिए मां ने कहा कि तुम ऐसे पद को क्यों नहीं प्राप्त करना चाहते हो कि जो कभी मिटे ही नहीं, जिसमें कोई परिवर्तन ही ना हो। और वो जो पद है, पद स्थैर्य माने बहुत स्थिर, जो शाश्वत है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं, और वो ऐसा अपरिवर्तनीय जो पद है वो परमात्मा का पद है, वहां कोई परिवर्तन नहीं, कोई विकार नहीं, कोई विनाश की प्रक्रिया नहीं। इसलिए मां ने अपने बालक नचिकेता को दिशा दी, उसके अंदर जो मां के प्रति विद्वेष पैदा हुआ था उस विद्वेष को भी उन्होंने वैराग्य में बदल दिया। ये बहुत ऊंची बात है। निराशा को, हताशा को भी उन्होंने वैराग्य में बदल दिया और उन्होंने कहा कि तुम इस नश्वर पद के पीछे अपनी शक्ति का ह्रास क्यों करना चाहते हो? अविनाशी पद परमात्मा का, उसको प्राप्त करने के लिए तुम प्रयत्न करो। और उसके बाद फिर ध्रुव में वैराग्य हुआ, क्रांति हुई और वो चल पड़े उस अविनाशी अटल ध्रुव पद को प्राप्त करने के लिए। इसलिए नारायण यहां पर तत्ते पदम, यहां पदम शब्द का अर्थ यही है, जो परमात्मा का पद। यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। भगवान ने कहा जिसको प्राप्त करने के बाद व्यक्ति वापस लौटता नहीं है और वो अक्षय पद है, न स पुनरावर्तते। वो तत्व, वो मोक्ष रूप पद, आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व संग्रहेण ब्रवीमि। मैं तुमको संक्षेप में बताता हूं, आरोप पद क्या है। एक ही शब्द में आचार्य यम ने कहा ओम इत्येतत्। वो पद है ओम। भगवान शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर बात कही, तदेतत् पदम यद बुभुक्षितम यद एतत् ओम इति। ओम शब्द वाच्यम, वो और कोई तत्व नहीं है जिसको तुम पाना चाहते हो, जो अक्षय पद है ओम। ओम आप जब ओम शब्द का श्रवण करते हैं ना, ये परमात्मा का आदि नाम है। इसका बड़ा सुंदर प्रकरण आख्यायिका है। भगवान के नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा जी पैदा हो गए। ब्रह्मा जी ने बहुत कोशिश की, मेरी जड़, मेरा मूल कहां है, लेकिन ब्रह्मा जी जान नहीं पाए और वो चिंतन करने लगे उस कमल के ऊपर बैठकर, अभी मेरे को क्या करना चाहिए। तो भगवान ने आदृश शब्द के द्वारा प्रेरणा दी, तप 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 करो तप करो। ब्रह्मा जी सोचने लगे तप तप करने के लिए कोई आधार तो चाहिए, कोई साधना, कोई जप, कोई ध्यान। तो उनके हृदय से शब्द निकले, ओंकारश्च अथ शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मणः पुरा कंठम भीत्वा विनिर्यातो तस्मात् मांगलिकाओ। जैसे ही ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मैं क्या करूं, साधना कैसे करूं, उसी समय उनके हृदय से शब्द निकले। परमात्मा ने प्रकट किए ओंकारश्च अथ शब्दश्च। ओंकार और अथ, ये दो शब्द निकले। इसलिए ओंकार और अथ ये दोनों शब्द बहुत पवित्र माने गए, क्योंकि वह निरालंबन अनाहत ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हुए। वहां कोई प्रयत्न नहीं है, प्रयत्न साध्य नहीं, वहां पर कोई क्रिया प्रक्रिया नहीं है, कोई वहां इच्छा नहीं, वहां कोई वासना नहीं है। अनायास परमेश्वर के संकल्प से, इसी को बोलते हैं अनाहत, ओम की ध्वनि प्रकट हुई और अथ शब्द। और उसके बाद फिर उस ओम की साधना की ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक उस ओम में धारणा की, परमात्मा की, उस ओंकार का जप किया और उसके बाद फिर भगवत साक्षात्कार हुआ। और सृष्टि को निर्माण करने का सामर्थ्य ब्रह्मा जी में आ गया। ओम ओम। और दूसरा जो शब्द है वो अथ, ब्रह्म सूत्र में भामतिकार अथ शब्द के बारे में कहते हैं, ओंकार और अथ, ये दोनों शब्द बड़े पवित्र शब्द हैं। आप इसका अर्थ जानो कि न जानो, केवल ये शब्द सुने आप, ओंकार और अथ शब्द, जैसे वो उदाहरण देते हैं, आपने गांव में देखा होगा, आप यात्रा करने के लिए निकले हैं और जैसे ही घर से आप निकले, उधर से कोई जल लेकर माताजी आ रही हो, कोई महिला आ रही हो और उसके घड़े में जल हो, जल से परिपूर्ण घट माथे पर लेकर जब कोई उधर से स्त्री आती है तो आप उसको मंगलमय समझते हैं। जल से परिपूर्ण घट दर्शन जैसे मंगलमय होता है, वैसे भामतिकार कहते हैं कि ओम जो शब्द है वो मंगलमय है। आप उसके अर्थ को जाने न जाने, आप केवल शब्द का श्रवण कर रहे हैं ओम, और अथ आपके सभी ग्रंथों के प्रारंभ में अथ शब्द आता है, अथ योगानुशासन, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा, ये अथ शब्द अपने आप में मंगलमय, और ये ओंकार अपने आप में मंगलमय शब्द है, और वो परमात्मा का वाचक, इसलिए पतंजलि ने कहा तस्य वाचक प्रणव, उस परमात्मा का वाचक नाम है ये प्रणव ओंकार। और यहां पर भी आचार्य यम ने कहा उस तत्व का बोधक, उस तत्व का वाचक ओम है, ओम ओम वाच्यम, ओम का वाच्य जो तत्व है उसको मैं कहता हूं। अब इस पर थोड़ा सा आप ध्यान देकर श्रवण करेंगे, मांडुक्य उपनिषद में इसका बहुत वर्णन किया है, बहुत आपको बहुत आश्चर्य होगा कि तत्व का प्रतिपादन करने के लिए आचार्य यम ने ओम शब्द का चयन किया है, ये तो आत्मा शब्द का चयन कर सकते थे, क्योंकि वेदांत का श्रवण करने वाले साधकों के लिए आत्मा शब्द और ब्रह्म शब्द का ज्यादा